भारत के परिदृश्य में हमने बचपन से ही किताबों में पढ़ा है कि भारत एक कृषि प्रधान देश है और इस कृषि प्रधान देश में धीरे से एक और तरह की खेती युवाओं में उद्यम को बढ़ावा दे रही है, यह है मछली पालन। तो यह एक अच्छा माध्यम हो सकता है युवाओं को रोजगार दिलाने का और ऑस्ट्रेलिया की सहायता से इसे व्यापारिक रूप से बढ़ावा भी दिया जा सकता है। इसी विषय पर हमने बात की डॉक्टर अरविंद मिश्रा से, जो उत्तर प्रदेश सरकार के डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज में सहायक निर्देशक के पद पर कार्यरत है। अरविंद जी, SBS के हिंदी कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
धन्यवाद अमित जी।
अगर हम भारत की बात करें तो कहीं कृषि प्रधान में से मछली पालन को पीछे छोड़ दिया जाता है। अरविंद जी, वर्तमान में भारत में मत्स्य व्यवसाय की क्या मौजूदा स्थिति है?
अमित जी, भारत में अगर आप देखें तो मछली पालन को दो बड़े तरीके से मछली का उद्योग यहाँ है। एक तो जो समुद्री क्षेत्र है, आप जानते हैं कि भारत तीन तरफ से समुद्रों से घिरा हुआ है, तो जो समुद्री मत्स्य उत्पादन है उसमें जो उसके समुद्र से लगे हुए जो राज्य हैं, उसमें आप केरल है, तमिलनाडु है, तो आंध्र प्रदेश है, यहाँ पर मछली का जो मछली पालन का सकते या मछली उत्पादन का बड़ा स्कोप है। और उसी के साथ ही भारत में अंतरस्थली मतलब जो इनलैंड फिशरी का भी बड़ा स्कोप है। तो इस तरह से भारत का समुद्री मत्स्य उत्पादन और अंतरस्थलीय मत्स्य उत्पादन का काफी अच्छा स्कोप है और इसमें काफी संभावनाएं भी हैं।
अरविंद जी, आपने मत्स्य पालन के क्षेत्र में संभावनाओं की बात की, तो आप हमें बताएंगे कि मछलियों की कौन कौन सी मुख्य प्रजातियां हैं जो भारत में पाई जाती हैं और इस व्यवसाय को बढ़ावा दे रही हैं?
आपने भारत में जब आप थे तो आपने सुना होगा कि टूना और पॉम्फ्रेट मछलियां खासतौर पर ये दो कैंडिडेट स्पीसीज हैं जो समुद्र से काफी ज्यादा निकल करके लोगों के बीच में लोकप्रिय हैं। और इसी तरह से जो अंतरस्थली है, जो हमारे नदियों में और बड़े बड़े जलाशयों में जो मछलियां निकलती हैं, उसमें एक इंडियन मेजर कार्प कही जाती है, इंडियन मेजर कार्प्स, उसमें रोहू, कतला और नयन है, ये बहुत ज्यादा लोकप्रिय हैं। और इस तरह से एक तरह के कार्प मछलियों का एक बड़ा व्यवसाय है। दूसरा जो व्यवसाय है वो कैट फिशेज का है। कैट फिशेज में एक तरह परन है, टेंगन है, ये मछलियां यहाँ काफी लोकप्रिय हैं।
अगर हम बात करें ऑस्ट्रेलिया की, तो एक्वाकल्चर यहाँ का सबसे बड़ा प्राइमरी व्यवसाय के रूप में उभर रहा है और हाल ही के वर्षों में ऑस्ट्रेलिया और भारत एक दूसरे के करीब आए हैं। आपके अनुसार ऑस्ट्रेलिया किस तरीके से, जैसे जॉइंट वेंचर या एक्वाकल्चर एजुकेशन द्वारा, भारत के मत्स्य व्यवसाय को लाभ पहुंचा सकता है?
देखिए, भारत की जो आपने अभी स्थिति कही, ऑस्ट्रेलिया की बहुत अच्छी स्थिति है, खास तौर पर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के मामले में, और दूसरा जो मछलियों का एक्सपोर्ट है उस मामले में काफी बड़ा योगदान ऑस्ट्रेलिया का है। और भारत की भी स्थिति बहुत खराब नहीं है, भारत बल्कि अच्छी है। मैं इस मामले में कहूंगा कि पूरी दुनिया में भारत जो है छठे नंबर पर मत्स्य निर्यातक देश है और अंतरस्थलीय मत्स्य उत्पादन में चीन का नंबर पहला है। दूसरे नंबर पर आप आश्चर्य करेंगे अमित जी कि भारत नंबर दूसरा है इस मामले पर जो अंतरस्थलीय मत्स्य उत्पादन है। लेकिन जो आपने अभी कहा कि हम कहाँ ज्वाइंट वेंचर अगर करें, तो ऑस्ट्रेलिया में एक जो मछली है जिसकी पूरी दुनिया में अपने जो उसने डंका बजा रखा है एक तरह से मत्स्य प्रेमियों के बीच में, वो बारामुंडी है।
अरविंद जी, आपने बात की बारामुंडी मछली की, इस मछली की खासियत क्या है जो भारत में इनलैंड फार्मिंग में योगदान दे सके?
तो ये खास तौर पर बारामुंडी की जो खासियत है वो ये है कि ये बोनलेस आप कह सकते हैं, मछलियों में काफी कांटे होते हैं तो बहुत लोग पसंद नहीं करते। बारामुंडी में कांटे तो हैं लेकिन उस तरह के नहीं है जिससे लोगों को खाने में दिक्कत होती हो, तो इस तरह की मछलियों को हम बोनलेस फिश कहते हैं, जिसको खाने में कांटे परेशान न करें लोगों को, उसको बोनलेस फिश कहते हैं। तो ये बारामुंडी बोनलेस मछली के रूप में यहाँ पर बहुत पसंद की जाती है बंगाल में भी, और इसका जो फैलाव है हम उत्तर प्रदेश में भी हम ये सोच रहे हैं कि इसको किस तरह से इसको यहाँ बढ़ाया जाए। खासतौर पर जो एंगलिंग करते हैं अमित जी, आपको याद होगा कि एक बंसी के सहारे एक कटिया और राड के सहारे जो मछली पकड़ते हैं लोग, जिसको एंगलिंग बोलते हैं, एंगलिंग में बारामुंडी काफी कंट्रीब्यूट कर सकती है। और हमारे पास जलाशय बहुत हैं जो सिंचाई विभाग द्वारा बनाए गए हैं, बड़े बड़े जो नदियों को रोक करके जलाशय बनाए गए हैं, उसमें इसको डाल करके और एंगलिंग, जिसको हम कहते हैं रिक्रिएशनल फिशरी, मेन मनोरंजन, उसको बढ़ावा देने के मामले में काफी स्कोप दिखाई पड़ रहा है।
बारामुंडी मछली के ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच एक्वाकल्चर के ज्ञान के आदान प्रदान को बढ़ाने में आप किस तरीके का योगदान देखते हैं?
इस मछली में इतना पोटेंशियल है, मैं बताऊं अमित जी की, ये एक्सपोर्ट पोटेंशियल ग्रुप में, और खास तौर पर इसकी जो टेक्नोलॉजी है, इसको हम जलाशयों में या तालाबों में या नदियों में किस तरह से इसको पाले, इस मामले में मैं समझता हूं कि ऑस्ट्रेलिया पूरी दुनिया में सिरमौर है, नंबर एक पर है। वहां जो एक्वाकल्चर इसका हो रहा है, बारामुंडी एक्वाकल्चर, जलीय उत्पादन जिसको कहेंगे, फ्रेश वाटर में ऑस्ट्रेलिया में, वो बहुत अच्छी स्थिति में है। और इस समय 4000 टन एक साल में ऑस्ट्रेलिया इसका उत्पादन कर रहा है, लेकिन आप देखें तो अमेरिका में उसकी तुलना में केवल 800 टन ये बारामुंडी का उत्पादन हो रहा है। और भारत में भी जो है इसका उत्पादन हो रहा है, लेकिन अभी बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है। भारतीय वैज्ञानिकों का ये मानना है कि हम बारामुंडी की एक्वाकल्चर टेक्निक ऑस्ट्रेलिया से सीख सकते हैं और भारत में इसको प्रोपोगेट कर सकते हैं, इसको बढ़ावा दे सकते हैं।
अरविंद जी, आपकी मछलियों के बारे में जानकारी मछली पालन से पाक विज्ञान तक है। अब चलते चलते हमारे सुनने वालों को आप बारामुंडी की किसी खास व्यंजन या पकाने की विधि के बारे में कुछ संक्षेप में बताएंगे?
ये एक मशहूर मछली है और भारत में इसको बंगाली काफी पसंद करते हैं, और गोवा में इसको लेकर गोवन बारामुंडी की एक अलग डिश ही बनती है वहां पर। और आपके ऑस्ट्रेलिया में आपको, अगर आपने खाई होगी तो मैंने जो सुना है कि वहाँ स्टीम करके इसको, और खासतौर पर नींबू और लहसुन का प्रयोग करके इसको बनाते हैं। भारत में इसको भेटकी के नाम से कहते हैं, बुलाते हैं, भेटकी माछेर पतूरी उसको बोलते हैं। और इसमें सूजी का प्रयोग करते हैं, इसको आप जानते हैं कि सरसों का तेल जो है यहाँ उसूल मछली बनाने का, उसको खासतौर पर फ्राई करने का बड़ा रिवाज है।
अरविंद जी, SBS से बात करने के लिए धन्यवाद।
धन्यवाद अमित जी।